हमारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने।
समर्थ बना दिया,
हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना।
ओम शांति। तपस्या का पहला दिन पूरा हुआ, आज तपस्या का दूसरा दिन। तो कल हमने स्वमान लिया था, मैं तपस्वी आत्मा हूं। स्थूल आसन का अभ्यास किया, सूक्ष्म आसन का अभ्यास किया और सिंहासन का अभ्यास किया। अंतर मन की गहराई में जाकर अपने आप को देखना, अपनी सूक्ष्म बीमारियों को देखना, यह अभ्यास हमने किया। तो कल तपस्या का पहला दिन था और आज तपस्या का दूसरा दिन। कल कहा था जितना हो सके 15 मिनट, आधा घंटा और उसको बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा। ट्रिपल लॉक लगाना है, पहला लॉक हाथों का, दूसरा लॉक पैरों का और तीसरा लॉक आंखों का। 15 मिनट बैठ जाना सुबह शाम और अपने अंतर मन की गहराई में उतरना। क्या है वह, कौन है वह, क्या क्या छिपा है वह। आज तपस्या का दूसरा दिन। मैं राज ऋषि हूं और व्यक्तवाणी 2 दिसंबर 1993, 2 दिसंबर 1993। मैं कौन हूं? राज ऋषि हूं। अपने को राज ऋषि समझते हो, राज भी और ऋषि भी। स्वराज्य मिला तो राजा भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, तो दोनों ही हो। बेहद का वैराग है या थोड़ा थोड़ा लगाव है। अगर कहां भी, चाहे अपने में, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहां भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं, न राजा है न ऋषि है, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, लगाव हो नहीं सकता। अगर कहां भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पाव हुआ ना, थोड़ा पुरानी दुनिया में थोड़ा नई दुनिया में, इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि दो नाव में पाव रखने वाले क्या होते हैं, न यहां के न वहां के। इसलिए राज ऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो, तेरे सच्चन में अनुभव करके देख लिया ना तो अनुभवी हो गए, फिर लगाओ कैसा, अनुभव भी कभी धोखा नहीं खाते। सुनने वाले सुनाने वाले धोखा खा सकते हैं लेकिन अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। तो दुख का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना, फिर अब धोखा नहीं खाओ। यह पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरन के समान है, यह शोक वाटिका में ले जाता है, तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लगाव रखना है। अच्छा नहीं लगता लेकिन छोड़ना मुश्किल है, खराब चीज को छोड़ना और अच्छी चीज को लेना मुश्किल होता है क्या? अगर कोई सोचता है कि छोड़ना है तो मुश्किल लगता है, लेना है तो सहज लगता है, तो पहले लेते हो फिर छोड़ते नहीं हो। लेने के आगे या देना तो कुछ भी नहीं है, तो क्या क्या मिला वह लंबी लिस्ट सामने रखो। सुना है ना गीत गाते रहो, कौन सा गीत, पाना था सो पा लिया काम क्या बाकी रहा, तो यह गीत गाना आता है मुख का नहीं मन का। मन का गीत तो सदा चलेगा, अविनाशी गीत चलता ही रहता है, ऑटोमेटिक है। तो आज तपस्या का दूसरा दिन, 21 दिन की भट्टी में आज अभ्यास करेंगे। मैं कौन हूं, राज ऋषि हूं। राज ऋषि में दो शब्द है, एक है राजा और दूसरा है ऋषि। ऋषि अर्थात वैरागी। महात्मा बुद्ध के जीवन काल की कहानी है। उस समय राजा बिंबिसार भी था। राजा बिंबिसार महात्मा बुद्ध को उस समय मिला था जब महात्मा बुद्ध तपस्वी थे, वो 6 साल तपस्या कर रहे थे, अभी सम्यक संबोधि को प्राप्त नहीं हुए थे, तब भी मिला, और फिर बाद में तब एक बार मिला जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, और तब वो महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए थे। और जब बिंबिसार महात्मा बुद्ध के पास आया तब उसने ये भी देखा कि मेरे परिवार के सभी लोग महात्मा बुद्ध के पास जाए, सभी लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो, सभी लोग ध्यान सीखे, अज्ञान का नाश करे। उसके परिवार के सब लोग तो गए परंतु उसकी एक पत्नी थी खेमा नाम की, और वो बहुत रूपवती थी, और उसने ये सुन रखा था कि महात्मा बुद्ध को रूप से बड़ी चिढ़ है या वैराग है उसको, तो ये रूप को ज्यादा नहीं मानता, शारीरिक सौंदर्य को इतना महत्व नहीं देता है, इसलिए उसे वो अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए वो उसके पास जाती नहीं थी। परंतु बिंबिसार की यह इच्छा थी कि मेरे परिवार का हर व्यक्ति उस ज्ञान को उपलब्ध हो जो मैंने पाया है। दासियों से कहकर बिंबिसार ने रानी खेमा के सामने उस विहार का ऐसा वर्णन किया जहां महात्मा बुद्ध रुके थे कि वो कितना सुंदर है, और वो मोहित हो गई। और वेणुवन में एक दिन वो गई और वहां महात्मा बुद्ध अपनी कुटिया में बैठे थे, और वो वहां जाकर बैठी, उसके मन में था कि मैं न जाऊं, फिर भी वो गई। उसके मन में था कि इनको सौंदर्य पसंद नहीं है, और उसे अपने सौंदर्य का एक सूक्ष्म अहंकार और अभिमान भी था। और वो जैसे ही वहां जाके बैठी उसने देखा कि महात्मा बुद्ध को एक अप्सरा पंखा कर रही है, और वो जो अप्सरा है उससे कई गुना अधिक सुंदर है, और उसे देखकर वो अवाक रह गई, ये क्या, यहां तो अप्सरा पहले से है। और फिर उसने देखा वो जो अप्सरा है धीरे 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 बूढ़ी हो रही है। चित्र दिखा, एक दृश्य दिखा उसको, अभी अभी अप्सरा है बहुत सुंदर, और थोड़ी देर में वो अप्सरा बूढ़ी हो रही है, थोड़ी देर में उसकी पीठ झुक गई है, थोड़ी देर में उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है, थोड़ी देर में उसका शरीर जर्जर हो गया है, थोड़ी देर पर वो जमीन पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में वो मर गई। सब कुछ उसे दिख गया, एक क्षण में ये दृश्य उसको दिख गया कि अभी अभी जो युवती थी, अभी अभी वो युवा थी, अप्सरा थी, और अभी अभी वो वृद्ध हो गई, जर्जर हो गई, मृत्यु सामने आ गई और गिर पड़ी। उसका अपना अभिमान अपने सौंदर्य का गिर पड़ा और हृदय में ऐसा वैराग जागा कि वो भी बुद्ध की शिष्य बन गई, भिक्षुनी बन गई, अरहंत बन गई। उस बोधि अवस्था को उसने भी प्राप्त कर लिया और उसके द्वारा फिर न मालूम कितनी भिक्षुनियों का कल्याण हुआ। तो वैराग कब जागता है? वैराग तब जागता है जब अभिमान टूटता है। वैराग तब जागता है जब जीवन की सत्यता का हम वैसा ही दर्शन कर लेते हैं जैसा वो है, जीवन को हम वैसा ही देख लेते जैसा वो है। वैराग तब जागता है। बुद्ध को वैराग कैसे जागा? जब दृश्य देखे, ये कौन है? बूढ़ा है, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? हाँ। ये कौन है? बीमार है, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? हाँ। ये कौन है? मृत, क्या मैं भी मरूंगा? हाँ। ये कौन है? सन्यासी, मुक्त हो चुका है। चार दृश्य देखे और वैराग जागा। राजा भर्तृहरि को वैराग जागा जब देखा कि मेरा दिया हुआ फल कहां से कहां पहुंच गया, जिसे मैं इतना प्रेम करता हूं वो तो किसी और से प्रेम करती है, और वो किसी और से, और वो किसी और से। जब आंखें ये देख लेती है कि संसार में धोखा ही धोखा है, वैराग जागता है। ब्रह्मा को वैराग कैसे जागा? जब देखा कि ये संसार समाप्त होने वाला है। सुबह की साकार मुरली, तुम्हारा इस दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तुम्हारा कनेक्शन तो उस दुनिया से है जो स्थापन होने वाली है, तुम्हारा जैसे कि इस दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। समय नाजुक है, समय बिगड़ने वाला है और परिस्थितियां बिगड़ने वाली है। सुबह की साकार मुरली, जब समय को देख लेते तब वैराग आता है, जब परिस्थितियों को देख लेते तब वैराग आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, संसार के जीवन के जीवंत जीवन के दुख को जो देख लेता है उसे वैराग आता है, अन्यथा वैराग नहीं आता। और जो वैराग आता भी है वो ऊपर ऊपर का थोपा हुआ वैराग, जो लंबा समय नहीं टिकता, जो केवल सुना है। वैराग अनुभव से आता है, जिसने अनुभव कर लिया उसी को वैराग आता है, जिसने केवल सुन रखा है। द्वापर से साधु संन्यासी योगी तपस्वी महात्मा उदासी कितने सारे हुए हैं, सभी ने वैराग की बात की है, पर क्या वो सत्य में सही में वैरागी थे? शायद नहीं। ऊपर से सुना है वैराग के विषय में, अंदर से राग है, और वो राग बहुत खींचता है, बहुत आकर्षित करता है। भले वैराग की बातें कर रहे हैं परंतु अंदर से राग ही राग है, राग ही राग है। तो आज की तपस्या का हमारा विषय है, मैं राज ऋषि हूं। अपने आप को राज ऋषि समझते हो? राज भी और ऋषि भी, स्वराज्य मिला तो राजा। राजा अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार। अभी अभी मुरली चली थी स्वराज्य पर। मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और संस्कार अर्थात पिछले और वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार वश में। इन तीनों को वश में करना अर्थात राजा बनना, गुलाम नहीं। जो यहां राजा वो वहां राजा। मन के साथ, और मन को वैसे कैसे वश में करेंगे? संकल्प कर करके, नए नए संकल्प करना और उन्हें पूरा करना। जैसे कल भी सुनाया था, 15 मिनट बैठो और सफल होकर ही उठना, एक घंटा बैठ जाना आंखें बंद करके और अपने अंतर मन की गहराई में झांक कर देखना। आज की मुरली में कम से कम 5 बार एक शब्द आया है, जांच। अपनी जांच करो, अपनी जांच करो, अपनी जांच करो, अपना पोता मेल रखो। श्रीमत के बरखिलाफ कोई कर्म तो नहीं, दैवी गुण है या नहीं है। अपनी जांच करो, अपना पोता मेल रखो, दैवी गुण है या नहीं है। अपनी जांच करो, अपनी जांच करो। कैसे करे? जांच करो, पोता मेल रखो। जांच करो अर्थात देखो अपने आप को। जो देख सके वही तो नहीं देख सकते, बाकी सब कुछ दिखता है। जिसने अपने आप को देख लिया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इस समय, विचार किस ओर भाग रहे, इच्छाएं किस तरफ की है, अंतर मन क्या चाहता है, जो अपने आप को देख ले उसे और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। संकल्प शक्ति को शक्तिशाली बनाएंगे कैसे? छोटे छोटे संकल्प करना और उन्हें पूरे करना, छोटे छोटे संकल्प करना और उन्हें पूरे करना। बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, निर्णय शक्ति, निर्णय को शक्तिशाली बनाना। अपने जीवन के निर्णय समर्पित कर दे बाबा को और करो और देखो फिर क्या परिणाम हुआ। संस्कार, कोई पुरानी आदत नहीं मिट रही है, क्या किया जाए? शायद फोकस नहीं किया है उस आदत पर। उस आदत से होने वाले नुकसानों के बारे में लिखो, और लिखने से भी ज्यादा, लिखने से भी कुछ नहीं होता है। ना ही समान, हम ये नहीं कह रहे कि लिखते रहो राजऋषि हूं राजऋषि हूं राजऋषि हूं। कितना लिखोगे? मन में प्रतिपल नए नए संकल्प उत्पन्न होते हैं, इसलिए सोचना है उसके ऊपर, चिंतन करना है कि ये जो बीमारी है क्या करें इस बीमारी का, कैसे जाएगी ये बीमारी। अपना ही डायग्नोसिस करना कि ये बीमारी है, जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं वो प्रेम नहीं, लगाव है। जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं वो प्रेम नहीं, वो वासना की ही एक तरंग है। अपनी बीमारी का निदान करना और उन्हें जड़ से हटा देना। आज की मुरली में एक विधि बताइए बीमारियों से मुक्त होने की, कौन सी? सेवा। सेवा में क्या हो जाओ? बिजी हो जाओ। तो संस्कार अर्थात एक ऐसी आदत है जो बहुत ही दुख दे रही है। अब उसके बारे में सोचो, ये आदत, इसने मुझे क्या क्या नुकसान पहुंचाया है, इस आदत की वजह से क्या क्या हो रहा है। समय बर्बाद हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे, संकल्प बर्बाद हो रहे, जीवन ऊर्जा बर्बाद हो रही है, पवित्रता नष्ट हो रही है। मूल बात है पवित्र बनने की आज की मुरली, मूल बात है याद करने की। लक्ष्मी नारायण यदि बनना है तो एक बाप को छोड़कर और किसको याद करोगे? तो होगा, नहीं तो नहीं। ये बाप का फरमान है, बाप को छोड़कर और किसी को भी याद ना करो। क्यों किसकी याद आती है? क्यों बुद्धि इधर उधर जाती है? क्यों ये अच्छा लगता है और वो अच्छा लगता है? क्यों किसके देह की तरफ दृष्टि जाती है? जैसे वो रानी खेमा जीवन के सारे दृश्य को देख लिया, वैसे ही बार बार देखते रहना है। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहां भी, चाहे अपने में, व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहां भी लगाव हो तो राज ऋषि नहीं। तो राज ऋषि अर्थात ऋषिराज, राज ऋषि अर्थात कोई भी लगाव नहीं, कोई चिपकाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई भी आकर्षण नहीं। और केवल आकर्षण नहीं, एक है आकर्षण, एक है विकर्षण, एक है लगाव, दूसरा है द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अटैचमेंट एंड रिपल्शंस। ये एक तरफ तो लगाव उत्पन्न होगा, दूसरी तरफ घृणा उत्पन्न होगी। दोनों को ही अनित्य जान। ये आया चला जाएगा, दर्द हो रहा है घुटने में, होने दो, अनित्य है। अभी आया, थोड़ी देर में चला जाएगा, संवेदना मात्र है वो। अपमान किया किसी ने, कल कहा धीरज धैर्य, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, ठंडी गर्मी, कुछ भी हो, अनित्य जान। समता, हर चीज में समता भाव। तो लगाव नहीं हो, जितना जहां जास्ती लगाव ज्यादा दुख देता है, ईर्ष्या से भी ज्यादा, द्वेष से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि लगाव में बेचैनी है, व्याकुलता है, किसी को हमारा किसी में लगाव है और वो फोन ही नहीं उठा रहा है, कितनी व्याकुलता अंदर होती है। आसक्ति है, पर हम ये बताना नहीं चाहते दुनिया के सामने कि ये मेरी आसक्ति है, ये रोग है, पर वह आसक्ति है जरूर। और जहां आसक्ति है वहां माया आ सकती है, और जहां लगाव है वहां पे व्याकुलता है, रेस्टलेसनेस। कहां पर भी अपने में ही लगाव है, अपने सौंदर्य में लगाव है, अपनी बुद्धि की बुद्धिमत्ता पर लगाव है। कोई भी जब भी कोई उस पर चोट करेगा दुख होगा। फिर हमने अपनी एक मूर्ति बना रखी है, अगर उस मूर्ति को जरा भी कोई हानि पहुंचाता है तो दुख होता है। मूर्ति के पहरेदार जैसे हम खुद, मैं खुद जा रहा हूं, ठीक है। एक व्यक्ति सोया है, उसको मेरी ठोकर लगी, वो कहता है दिखता नहीं कि अंधे हो क्या, तो मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरी जो मूर्ति मैंने अपने लिए बना रखी थी उसको उसने थोड़ी चोट पहुंचाई। पर एक बात ठीक थी कि किसी ने देखा नहीं सुना नहीं, सेफ्टी थी। उसने बोल तो दिया, मुझे अपमान जैसा ही लगा थोड़ा, क्योंकि उसने मुझे अंधा कहा ना, ए तुझे दिखता नहीं क्या, अंधे हो क्या। फिर कुछ दूसरे दिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूं जो मुझे बहुत मानते हैं, फिर से चोट लगी। उसने कहा अंधे हो क्या, अब तो मुझे ज्यादा चोट लगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एक मूर्ति अपने स्टूडेंट्स के मन में बिठा रखी है, अब दो चोटें लगी है, एक तो मुझे चोट लगी और मैंने अपनी जो मूर्ति है, मेरे जो 5 स्टूडेंट्स थे मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके मन में लगी क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ सोचते हैं और वो मूर्ति मैंने ही बनाई है उनके मन में। इसलिए दूसरे दिन मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी। तीसरा दिन मैं फिर जा रहा हूं, स्टूडेंट साथ में है, चोट लगी फिर से। वो कहता है अंधे हो क्या, पर देखा ये तो मेरा परिचित है, मेरा अपना है, ये आज ज्यादा चोट लगी, ये तो मेरा ही है, मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरा ही दोस्त है। उसने ये कहा और वो भी सबके सामने कह दिया। या इसमें और दो पार्ट कर दो, पहले दिन मैं अकेला था तब पता चला ये भाई है या अपना है, और चौथे दिन ये सारे साथी थे तब और ज्यादा चोट लगी। तो चोट है वही, पर दुख ज्यादा ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो मूर्ति बनाई है अपनी, उसको जब भी चोट लगती है तो दुख होता है। और हमने जो अपनी मूर्ति बनाई है वो इतनी अच्छी बना रखी है, प्यारी प्यारी सी, अपने में ही लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव, जो अपने आप पर ही हंस सके महान है। दूसरा लगाव व्यक्ति में, वस्तु व्यक्ति में, व्यक्ति को अपना मान लिया है। और जब मैं किसी व्यक्ति को अपना मानता हूं तो फिर वो व्यक्ति वस्तु बन जाती है, फिर वो वस्तु मैं किसी और को नहीं देना चाहता, वो मेरी है, वो मेरा है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे। दुख है, लगाव में दुख है, चिपकाव में दुख है, बेचैनी है, व्याकुलता है, अजीब सी मन की दशा हो जाती है उसमें। तो बाबा कह रहे हैं कि लगाव को हटाते जाओ, लगाव में बुराई क्या है उसके ऊपर चिंतन करो, लगाव से क्या क्या नुकसान हुआ है उसके ऊपर चिंतन करो। न राजा न ऋषि, क्योंकि राज्य स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में, लगाव हो नहीं सकता। अगर कहां भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। लगाव है अर्थात राज ऋषि नहीं, कैंसल। अगर लगाव है तो कोई कहे मेरी नाव बहुत अच्छी है और उसके सामने कोई दूसरी नाव लेके आए और कहे कि ये जो नाव है ना तुमसे तो बहुत अच्छी है, वो कहते ठीक इसमें एक बार तो बैठो, वो कहते बैठूंगा जरूर पर एक पांव में अपनी नाव में जरूर रखूंगा, तुम्हारी नाव कितनी भी अच्छी हो पर मैं अपनी नाव नहीं छोड़ सकता। साकार महावाक्य है, दो नाव में पैर रखोगे तो चीर पड़ोगे, न यहां के न वहां के। न माया मिली न राम, दुविधा में दो गए, ये भी गया वो भी गया, ना इधर उन्नति कर पाए ना लौकिक में उन्नति कर पाए। ऐसे कई सारे कुमार हैं जो अभी ज्ञान में है पर अभी अधर कुमार है, तब भी ज्ञान में थे जब कुमार थे मतलब, और अभी भी ज्ञान में ही है, उधर का भी अनुभव इधर का भी अनुभव है। पर अंतर मन में कुछ तो खाता ही होगा कि वो जो निर्बंधन जीवन था वो कहां रहा अब। इसलिए दो नाव में पाव नहीं रखना है, इन टू माइंड्स इंग्लिश में कहते हैं, इधर भी एक ही मिलेगा, दो नहीं मिल सकते, या तो वो लो या तो ये लो। और मन में जब भी दुविधा है अर्थात उस दुविधा के पीछे कोई विकार छिपा है, जब भी माइंड कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन के पीछे जरूर कोई सूक्ष्म विकार है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। श्रीमत में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इसलिए थोड़ा पुरानी दुनिया में थोड़ा नई दुनिया में अगर लगाव है तो दो नाव में पाव है, एक भाव दूसरा न कोई, क्योंकि दो नाव में पाव रखने वाले का क्या होता है, ना यहां के ना वहां के। इसलिए राजऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी बनो, 63 जन्म अनुभव करके देख लिया। तो अभी हम एक ड्रिल करेंगे, 63 जन्मों की ड्रिल। अपनी आंखों के सामने 63 शरीर लाने हैं, 30 इधर, 30 उसके नीचे, इधर 3। अपने ही शरीरों को देखना है, कौन से शरीरों को, 63 जन्म हमने जो शरीर लिए है, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री के देह में प्रवेश करके देखना क्या है अनुभव, अभी स्त्री के शरीर में, अभी पुरुष के शरीर में, अभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में। बाबा कह रहे हैं कि तुमने अनुभव करके देख लिया तो अनुभव हो गए ना, फिर लगाओ कैसा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, धोखा तो वो खाते हैं जिन्होंने केवल बुद्धि से समझा है, जिन्होंने तर्क वितर्क किया है वो धोखा खा सकते हैं, जिन्होंने सुना है काम महाशत्रु है, नरक का द्वार है, ऐसा होता है वैसा होता है, बुद्धि से बहुत कुछ समझ रखा है पर अनुभव नहीं है, इसलिए धोखा तो खाएंगे। और जैसे उस दिन भी कहा था, अनुभव शरीर के तल पर होना चाहिए, जो शरीर के तल पर अनुभव होता है, कितना भी कहो कि भागोगे तो थकान होगी, सांस फूलेगी, उसने बुद्धि से समझा है, जब तक तो खुद नहीं भागेगा सांस नहीं फूलती उसको कोई अनुभव नहीं। पैर दुखता है बैठने से सुना है, पर जब तक तो खुद नहीं बैठेगा उसे अनुभव नहीं, और जब अनुभव हो गया तब पता चलता है, हाँ बहुत दुखता है, हाय रे मरा रे, अनुभव, हर चीज का अनुभव। जैसे शारीरिक अनुभव जो होते, क्यों काम विकार इतना गहरा है, सब कुछ करने के बाद भी नहीं छूटता, लंबा लंबा समय व्यक्ति ब्रह्मचारी व्रत धारण करता है परंतु जड़ों में काम अभी भी है, क्यों, क्योंकि काम का जो अनुभव 63 जन्म था वो शरीर के तल पर था, उसकी जड़ें अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, ऊपर का कितना भी चिंतन कॉन्शियस माइंड का उसे टच भी नहीं कर रहा है। इसीलिए कितने सारे कुमार कुमारिया ब्रह्मचारी गण संसार के लंबा लंबा समय तक व्रत को पालन करते हैं ब्रह्मचर्य के, और फिर अचानक एक दिन सुनामी आ जाती है, वासना का विस्फोट होता है, समझ ही नहीं आता ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और फंस जाते। अच्छे अच्छे कुमार सभी स्थिर, ट्रिपल लॉक, हाथ बंद, पैर बंद, आंखें बंद, जिस स्थिति में बैठेंगे बस उसी स्थिति में बैठना है, जरा भी हलचल नहीं, उंगली की भी हलचल नहीं, आंखों के सामने दिखाई दे रहे भिन्न भिन्न शरीर, द्वापर से अब तक जो मैंने अलग अलग शरीर धारण किए वो सभी शरीर मुझे दिख रहे हैं। कभी स्त्री का शरीर, कभी पुरुष का शरीर देख रहा मैं आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती हूं। जन्म मृत्यु पुनः गर्भ जेल फिर जीवन फिर मृत्यु। देख रहा हूं अपने आप को किस किस प्रकार से एक एक जन्म में इस शरीर की गति हुई। कभी बीमार वो बुढ़ापा फिर मृत्यु। देख रहा हूं स्वयं को अपने ही शरीर को जलते हुए जल रहा है। धधकती आग की लपटे शरीर भस्म हो गया। कितना संभाला जिसको, कितना लगाव था जिसके, कितना खिलाया जिसको। मैं आत्मा देख रही हूं मेरा ही शरीर जल रहा है अनुभव हो रहा है। देख रही हूं शरीर को जलता हुआ तो किसी जन्म में देख रही हूं शरीर को दफन किया जा रहा है। सब छूट गए मां बाप मित्र संबंधी सारी मिल्कियत धरी की धरी रह गई। देख रहा हूं स्वयं को कभी योगी के रूप में और संकल्प से शरीर का त्याग करते हुए सुखद अनुभव। फिर देख रहा हूं कभी कभी भगत के रूप में अनन्य भक्ति प्रभु प्रेम और प्रभु के चरणों में शरीर का त्याग करते हुए और किसी जन्म में वो चीखो पुकार प्राकृतिक आपदाएं भूकंप और शरीर नष्ट हो रहा है। हर जन्म में अलग अलग मृत्यु वो बुढ़ापा कभी बीमारी से मृत्यु कभी बुढ़ापे से मृत्यु वो वार्धक्य का दुख वो वृद्धावस्था की पीड़ा। अलग अलग जन्मों में अलग अलग तरीके की मृत्यु। जन्म अनित्य मृत्यु भी अनित्य। जरा व्याधि सब कुछ अनित्य। अब देखता हूं इस अंतिम जन्म को। सबसे जास्ती लगाव इस शरीर से जो झूठन का झूठन का झूठन है। मिट्टी का यह पुतला कौन मां कौन बाप कौन भाई कौन बहन सब पराए। इस संसार में कोई किसी का नहीं। सब नाते झूठे मिथ्या है। मैं आत्मा अकेली थी अकेली हूं अकेली जाना है। जन जन की प्यास के बाद वो मिला है वही एकमात्र सहारा है। मैं राज ऋषि हूं। इस देह के जो लगा है जो तादात्म्य है जो दीवार है बीच में मैं इस देह से अलग हूं, सबसे अलग, ना इस शरीर से ना इस संसार से। कोई आसक्ति, कोई लगाव, कोई चिपकाव, कोई आकर्षण, मैं वैरागी हूं। वैराग मेरे जीवन का सौंदर्य श्रृंगार है। वैराग्य सुधारस, निरंतर पीने वाली मैं आत्मा। फिर से एक बार ये सारे दृश्य अपनी आंखों के सामने घुमाएंगे। विजुलाइज, तिरसठ जन्म अनुभव करके देख लिया ना, तो अनुभवी हो गए। फिर लगाओ कैसा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। सुनने वाला, सुनाने वाले धोखा खा सकते हैं, लेकिन अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। तो दुख का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया ना, अब फिर धोखा नहीं खाओ। यह पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरन के लगाव के समान है, यह शोक वाटिका में ले जाने वाला है। तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लगाव रखना है। अच्छा नहीं लगता लेकिन छोड़ना मुश्किल है। आज की मुरली में जो अच्छा नहीं लगता वो छोड़ दो। तो लगाव से नुकसान, सबसे पहला लगाव रखना अर्थात दो नाव में पैर रखना, लगाव रखना अर्थात सोनी हिरन, मृग हिरन है, कहां ले जाएगा, कॉटेज ऑफ सॉरो, शोक वाटिका में ले जाएगा। धोखा है लगाव में, क्या है, डिसेप्शन, भयंकर डिसेप्शन है। जो हमने सोच रखा था ऐसा होगा ऐसा मिलेगा, वो मिला ही नहीं, कुछ और ही मिल गया, भयंकर धोखा। और कई बार धोखे की आवश्यकता होती है, तब तक होश ठिकाने नहीं आते। कोई कितना भी कहो बताए, धोखा मिलना चाहिए। जितनी ज्यादा ठोकरे उतना बड़ा ठाकुर। तो ठोकरे, बच्चे को कितना भी समझाओ सिखाओ, हाथ नहीं डालो नहीं डालो नहीं डालो आग में, नहीं मानता है, डालने दो, फिर समझेगा उसको। तो पहला दो नाव, एक पैर इधर एक पैर उधर, एक पैर ज्ञान में एक पैर अज्ञान में, एक पैर पवित्रता में एक पैर काम विकार में, एक पैर ब्रह्मा कुमार एक पैर शूद्र कुमार। कहां है डिवीजन, नहीं हो माइंड में, स्पिरिचुअल सिजोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनैलिटी, खंडित व्यक्तित्व। एक मन इधर लगा हुआ है, पर एक मन मुरली सुन रहा है, दूसरा मन सोच रहा है आज कौन सी फिल्म देखूं। एक मन मुरली सुन रहा है, एक सोच रहा है कि आज क्रिकेट मैच है वो देखूं। एक मन मुरली में है और एक मन सोच रहा है आज भोग में क्या बनाए, क्या खाऊं और कब खाऊं और कैसे खाऊं। हम सब सन्यासी है, सन्यासी तपस्वी वैरागी, जो भी आए अनासक्त भाव से उसे स्वीकार करना है, स्वार्थ के लिए नहीं, अनासक्त वृत्ति से, समर्पण भाव से। बाला मैं वैरागिन होंगी, बाला मैं वैरागिन होंगी, जिन भेषा मेरे साहब रिचे सो ही भेष धरूंगी। मीरा कहती है कि मुझे वैरागिन होना है, और मीरा का वैराग सच्चा वैराग है, थोपा हुआ वैराग नहीं है, जबरदस्ती का जबरन वैराग नहीं है, स्वतः आया है, स्वस्फूरित है, प्रेममयी वैराग है। और वैराग हमेशा वैसा ही हो तो ही वो नेचुरल रहेगा, तो ही वो सतत रहेगा लंबा समय। जो जबरदस्ती लाया जाता है वो नहीं रहता है, अंदर से ही अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिन पहले मुरली में था, तुम्हें संसार अच्छा ही नहीं लगता है, उन्हें सेवा ही अच्छी लगती है, प्रश्न का उत्तर था ना, उन्हें किस में अच्छा लगता है रमन करते हैं। आज भी कहा इन युक्तियों में रमन करो, आज की मुरली में सेवा की युक्ति है, बाप तुम्हें बनाते बताते इसमें रमन करो, उन्हें अच्छा ही ये लगता है। थकान नहीं होती है कितना भी बोलने के बाद भी, क्योंकि अच्छा ही है लगता, वैसे सहज अच्छा ही नहीं लगता। जैसे कोई कोई होते हैं बचपन से ही, ये खाओ कहते शक्कर है, नहीं शक्कर मुझे बचपन से अच्छी नहीं लगती है। ये नहीं कि वो योगी तपस्वी महात्मा है, अच्छा ही नहीं लगता, बस रिजेक्टेड, हटा दिया। वैसे ही यहां पर लॉजिक से, तर्क से, ज्ञान के आधार से मन को समझा कर, क्योंकि कल भी कहा था मन क्या है, पालतू, पालतू है या जंगली है, जंगली है, जंगली, उसको पालतू बनाना है। अब जंगली जानवर को पालतू बनाना आसान काम नहीं है, बहुत धीरज से काम करना पड़ेगा। उसको अगर जबरदस्ती करो तोड़फोड़ करेगा वो, बहुत अपने मन को समझना है, ये मेरा पैटर्न क्या है इधर, उसको कोई हमको कुछ बताने वाला, मुझे खुद ही समझना पड़ेगा। मैं अगर अपने आप को कहता हूं कि ये करो तो वो विद्रोह करता है, विद्रोही है, बहुत विद्रोही चाणक्य है मन। तो उसको, उसके विद्रोह को समझना है, उसको बड़ा प्यार से फुसलाकर, वो इतने जल्दी नहीं फंसने वाला वो, तो उसको समझना है कैसे धोखा देता है वो। अभी अभी प्रतिज्ञा करो और देखो प्रतिज्ञा कैसे तोड़ता है, किसी युक्ति से प्रतिज्ञा तोड़ता है, बहुत युक्ति से तोड़ता है, ताकि अंदर ये दुख भी ना हो कि प्रतिज्ञा टूटी। श्रीमत अनुसार अपने आप को, श्रीमत को बड़ा ढंग से ये करता है। तो सहज वैराग हो, जैसे मीरा का वैराग है, सहज है वो, थोपा हुआ नहीं है। क्या कह रही है कि जिन भेषा मेरे साहेब रीछे सोही बिछ, सो बेस धरूंगी, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो छिटकावा केश, प्राण हमारा वही बसत है, यहां तो खाली खोड़, यहां है ही नहीं तन हमारा, मन वहां है, तन खाली शरीर यहां है, मात पिता परिवार समूह है, कही ये दिन का तोड़, बाला मैं वैरागी होंगी। तो मन में वैराग के संकल्प लाने हैं, और वैराग के क्या क्या संकल्प है मुरलियों में, कैसे लाए वैराग, अब ये एक मेन प्रश्न है। मुख्य प्रश्न क्या है, वैराग को अंदर कैसे जन्म हो, वैराग का हृदय की भूमि में वैराग कैसे जन्म ले। ये धोखेबाजों की दुनिया है, अपने जीवन में हमने कहां कहां धोखे खाए, जिन्होंने धोखा दिया है उनको, उनकी जीवन कहानी चरित्र सब याद करो कि ये है, इनके द्वारा हमको धोखे मिले हैं, फिर भी हम फिर फंसे, ये नहीं अब कोई दूसरा आएगा, हमने भी दिया उन्होंने भी दिया। वैराग अर्थात किसी एक स्त्री से वैराग नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग, वैराग अर्थात एक पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग। ऐसा नहीं इसने मुझे धोखा दिया अब इससे मैं बात नहीं करूंगी, अब इससे नहीं करूंगी तो कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरे से छोड़ोगे तो तीसरा आ जाएगा, बात तो वही है। उसमें जो अवगुण था वो इसमें नहीं है, इसलिए इसने आकर्षित किया, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता घर पे, ये दूसरा ध्यान देता है अभी, इसलिए ध्यान इसके तरफ गया, पर इसमें कोई दूसरा छिपा हुआ अवगुण है वो, जो 2 साल के बाद पता चलेगा। वैराग अर्थात एक स्त्री से वैराग नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग, एक पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग, सबसे ही वैराग, कुछ अच्छा ही नहीं लगे, ये संसार की चीज है। यहां काम कर रहे हैं, यहां सेवाएं कर रहे हैं, ऊपर से सेवाएं है, सब कुछ कर रहे हैं, मन लगा कर कर रहे, परंतु अंदर से पता है आज का वरदान हम वानप्रस्थी है, हमें यहां नहीं रहना है, हमें वहां जाना है, वाणी से परे, यह ज्ञान स्वरूप स्थिति है। तो वैराग लाने की विधि, सबसे पहला सत्य को देखना, सत्य जो है उसे वैसा ही देखा जाए कि ये सत्य है और मैं जो देख रहा हूं वो भ्रम है। दूसरा नुकसान क्या क्या है लगाव से, मुरली में बताया शोक वाटिका में ले जाएगा और दोपहर चीर पड़ोगे, ये नुकसान है लगाव से। दूसरा बताया वैराग लगाव में क्या है, बेचैनी है, व्याकुलता है, चित्त व्याकुल हो जाता है, एकाग्रता नहीं हो जाती, और पवित्रता के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, बिना एकाग्र हुए प्यूरिटी आ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो, प्यूरिटी के लिए बहुत जबरदस्त एकाग्रता की आवश्यकता है। अगला, वैराग कैसे लाए? जो मुरलियों में आता है, भंभोर को आग लगने वाली है, उस भंभोर को नहीं, अपने देह को ही आग लगते हुए देखना है, अपने देह को जलती चिताओं में देखना है। ये सारे रिश्तेदार, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बच्चे, ये सारे खड़े हैं चिता में, जल रहा हूं जल रही हूं, आग उठ रही है, और वो सारे मित्र संबंधी ऊपर से तो नहीं पर अंदर से बोल रहे हैं, और किसी किसी तो पता ही नहीं, जब देखा हलवा, अरे कौन गया, अच्छा वो गया क्या, ओके अच्छा ही हुआ, कौन था वो, किसी को पता भी नहीं नाम बताया तो उसको नाम भी पता नहीं, कौन से डिपार्टमेंट में था, अरे वो था। एक विधि है वैराग की, जो मधुबन निवासी है, मधुबन में अब तक जिन्होंने भी शरीर छोड़ा उन सबको आंखों के सामने लाओ, ये उसका जीवन गया, ये उसका जीवन गया, ये उसका जीवन गया, क्या लेके गया, क्या रहा, क्या लेके गया, हम क्या लेके जा रहे, कुछ भी नहीं, जो उसने दुआएं कमाई बस वही लेके गया, जो उसने पुरुषार्थ किया था वही लेके गया, जो उसने ज्ञान का सिंचन किया था, संचित किया था चित्त में, वही लेके गया, जो दैवी गुण अंदर चेतना में भरे थे बस वही लेके गया, बाकी क्या लेके गया, सब कुछ धरा की धरा रह गया। तो ये भी एक मधुबन निवासियों के लिए अभ्यास है कि जिन्होंने, मधुबन निवासियों ने जो जो, क्योंकि हमारे मित्र संबंधी तो यही है, तो इन्होंने जिसने भी शरीर छोड़ा सारों को देखना है, एक एक को याद करके, ये गया, और फिर लास्ट में अपने को भी देख लेना जाते हुए कि हम भी गए, हमारी भी चिता जल रही है, लोग कह रहे पता नहीं कब पूरा होगा, पैर दुख रहे, जल्दी चलना है, आज वैसे ब्रह्मा भोजन है। पुराने जमाने में जो कपाल क्रिया की जाती है, कपाल क्रिया पता है, सिर को फोड़ा जाता था, और क्योंकि खोपड़ी जो होती है ना जल्दी फूटती नहीं है, तो उसको डंडे से मारा जाता था, कौन मारे, तो इसलिए बेटे को, बेटे के द्वारा ही किया जाए, और उसको यह कहा जाता है कि इधर खोपड़ी फूटेगी उधर स्वर्ग का द्वार टूटेगा, तो मारो, इधर फूटेगी तो उधर जाएगा वो स्वर्ग में ना, इसीलिए कपाल क्रिया की जाती है। तो सोचो हम भी हैं और हमारी भी खोपड़ी फूट रहे, कपाल क्रिया तो अपने ही मृत्यु को देखना है, अपने ही मृत्यु का दर्शन करना है। जिसने अपनी मृत्यु को देख लिया वो निर्भय है, अब क्या मर चुका है। और देखो लोग क्या क्या कह रहे हैं, कोई कह रहा है बहुत अच्छा हुआ, कोई कहते अच्छा है बाहर कम हुआ, कोई कहते अच्छा है मेरा रास्ता साफ हो गया, उसके रास्ते में हम ही तो बाधा थे, साफ हो गया। कई कहेंगे हाँ बहुत अच्छा था, इससे हमने बहुत सीखा, कुछ कुछ विशेषताएं भी देखते, सब देखते, हर एक प्रकार की चीजें देखते, और कोई कोई को कोई मतलब ही नहीं है, आज ये गया कल वो जाएगा, ठीक है, एकदम ही वैरागी है, जैसे हम थे वैसे वो वैरागी है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, है तो है नहीं तो गया तो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो आसक्तियां है वस्तुओं में, फिर ये देख लेना वस्तुओं में हमारी कहां कहां आसक्तियां है, किन किन वस्तुओं में है, ये पेन में मेरी बहुत आसक्ति है, कल ये गुम हो गया तो कितनी बेचैनी होगी, इधर वैराग की इतनी बातें सुनी, इतनी बातें सुनी, जैसे क्लास पूरा हुआ बाहर देखा चप्पल गायब, दुख होता तो है अलग अलग रीति से, परंतु ये देखना है वस्तुएं जो है वो आज है कल नहीं है, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, अपने आप को ऐसे देखना अकिंचन, बिना पैसों के। अगर आपको कहा जाए 3 मास भारत की यात्रा करो, बस इसकी तैयारी करनी है, अगर आपको कहा जाए ये जो कुर्ता पहना है, ये चप्पल, ये कुर्ता, ये पैजामा, बस, और ये लो एक अव्यक्त वाणी की किताब, तो बहुत खुशी खुशी से जा सके, और पैर जेब में एक पैसा भी नहीं, कैसे रहोगे, कहां सोओगे, क्या करोगे, निकल पड़ो, ये है भ्रमण, इसकी भी तैयारी हो, क्योंकि इसकी भी कभी कभी होगा, टाइम आ जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, जो है वो सब छिन जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, बस 3 मास के लिए भारत भ्रमण। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का भ्रमण किया था, उनके पास 2 ही किताबें थी उस समय, आबू में भी आए थे यहां पर चंपा गुफा में. दो ही किताबें थी, एक भगवत गीता, दूसरी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट. इंग्लिश किताब है इमिटेशन ऑफ, बस ये दो किताबों के साथ पूरे भारत घूमे थे. कुछ भी नहीं हाथ में, और कोई किताब नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं. विदेश जाने से पहले क्यों? इससे वैराग जगता है कि लोग किस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं. अभी तो जो ट्रीटमेंट देते हमारे नाम के सामने, जो वर्णमाला है ना उसको देख के ट्रीटमेंट देते हैं. हमारे नाम के सामने जो अल्फाबेट्स है, डिग्रिया ये वो, अगर पता चले ये कोई साधारण सा सेवादार है तो इतना नहीं देखेंगे. उसको पता चले हाँ ये वो है तो उसको थोड़ा, उसकी जो पद प्रतिष्ठा है ना उसको देख के ट्रीटमेंट दी जाती. हम यहां इस यज्ञ में आने से पहले बहुत सारे आश्रमों में गए हुए हैं, वहां पर ऐसे ऐसे लोग देखे जो बड़े बड़े अफसर पर कितनी छोटी छोटी सेवाएं कर रहे हैं आश्रमों में. डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये वो झाड़ू लगा रहे और पता भी नहीं चलता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये है करके. इतनी निरहंकारिता. तो इसकी भी हमारी तैयारी कि आज जो कुछ है, जो कमरा आज है ना वो कल नहीं रहेगा, आउट. जो पैसे आज है कुछ भी पैसे नहीं रहेंगे, देखो फिर क्या होता है. और हमको कहा कि जाओ अब निकल पड़ो, फिर वैराग. और जो दुख से जाएगा तब पता चलेगा कि अब तक का वैराग कैसा था. वैराग का संबंध पैसों से नहीं है. जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है वो वैरागी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. उसमें तो बहुत ज्यादा मोह होता है. इसके लिए वैरागी जो बनते हैं ना वो बुद्ध बनता है, वो महावीर बनता है, जिसने सारे वैभव देख लिए वो वैरागी बनते हैं ज्यादा, जा राजा भरतरी. और जो गरीब होते हैं उसमें तो बहुत आसक्ति होती कई बार. इसलिए वैराग का संबंध, संन्यास का संबंध, समर्पण का संबंध पैसे होने और न होने से तो है ही नहीं. सारा खेल इधर का है, मन का. तो वैराग लाने की विधि दूसरी, अनित्यता को देखना, नश्वरता को देखना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चार चीजों का निरंतर स्मरण करते रहना. बीमार को देखो तो ये आएगी बीमारी, मृत्यु को देखो तो ये सोचो मेरी मृत्यु हो रही हो जब भी कोई जाए अभी अगली बार. और हमेशा शमशान में जाते रहना बीच बीच में, विजिट विजिट होती रहे ताकि आग को देखेंगे ना तो वैराग जगता है. शमशानी ही सही पर चलेगा, शमशानी ज्ञान, शमशानी वैराग, शमशानी योग चलेगा. थोड़ा 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 अभ्यास तो एक घंटे के लिए तो हो ही जाएगा. चुपचाप खड़े रह के देखते रहना ये जल रहा है ना, मैं भी जलने वाला हूं. फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो रूटीन हो गया है, उस रीति से नहीं देखना है उसको, वो कारोबार बना दिया इसलिए फर्क नहीं पड़ता है. पर जब मौन और एकांत में देखते रहो तो वैराग जगता है. और वैराग लाने की विधि, अब घर जाना है गीत सुन लो चलो, और विनाज सामने है, और सब मरे पड़े हैं, कब्र दाखिल है, कब्रस्थान है. ये शब्द इतनी बार सुने कि इनसे वैराग नहीं आता. दूसरा बताओ वैराग के लिए नए शब्द चाहिए, नव शब्द चाहिए. तो वैराग लाना है अपने अंदर, और लाना कहने से अच्छा आ जाए. इसलिए देखना है चीजों को जैसी वो है. ये बेटा ये बेटी, हम कहते हैं ये लोग हमें बहुत प्यार है. क्या प्यार है? उनका अपने स्वार्थ है इसलिए प्यार है, नहीं तो कहां से प्यार होता? सारा संसार स्वार्थ पर चल रहा है. यहां कोई किसी से कभी, किसी ने कभी प्यार किया ही नहीं है, सब स्वार्थी है. एक परमात्मा छोड़ के कोई भी हमसे प्रेम नहीं करता. जो भी है, मां बाप बहन भाई मित्र संबंधी, सारे स्वार्थ छिपा है पीछे. इसलिए वैराग लाना है. सत्यता को जैसे ही देख, वो देखने की आंख अंदर आ जाए तो वैराग उत्पन्न हो जाएगा. तो बाबा कह रहे हैं लास्ट, क्या करो, कौन सी लिस्ट सामने, क्या क्या मिला है वो लिस्ट सामने लाओ. इससे एक है ये निगेटिव अप्रोच, निगेटिविटी देखना. जिसमें राग है उसके दोष को देखने का अभ्यास करना है, उस संबंध के दोष क्या क्या है, दोष दृष्टि निर्माण करनी है. कि मैं सोचता हूं ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत गुण है, पर सब लोग तो नहीं सोचते ऐसा, ये केवल मेरा अपना सोच अपनी सोच है, इसलिए मैं इसके तरफ आकर्षित हूं। ये बहन बहुत ही अच्छी है, ये बहन की मुरली सुनाने का ढंग बहुत अच्छा है, इसका सभी अच्छा है, पर दूसरे को तो पसंद ही नहीं है, तो ये मेरा व्यक्तिगत मोह हो गया। उस दिन मुरली में था किसी की भी तारीफ नहीं करो, प्रशंसा करनी नहीं है तुमको, था ना, अभी एक हफ्ते स्तुति करनी ही नहीं है तुमको। तो क्या क्या, एक तो ये अप्रोच है कि निगेटिव, दूसरी अप्रोच है पॉजिटिव, क्या क्या मिला उसका चिंतन करते रहो, अपने आप वो सब छूट जाएगा, प्रभु प्रेम में डूब जाओ संसार छूट जाएगा, बड़ा लड्डू मिल गया छोटा लड्डू अपने आप बाजू हो गया। तो, बड़ा कुछ मिल गया तो क्या करे कंकड़ पत्थरों का, वो अपने आप छूट जाएगा। तो इस जीवन में क्या क्या मिला, अभी ये एक दूसरा अभ्यास है, एक 15 मिनट रात को या दिन भर में कभी भी ट्रिपल लॉक एकांत में बैठो, आंखें बंद, और मुझे क्या क्या मिला, मधुबन मिला, आबू में रहने का भाग्य मिला, मधुबन में तपस्या करने का भाग्य मिला, रोज चार धाम की यात्रा सशरीर करने का भाग्य मिला, लोग तो मन से कर रहे, हमको शरीर के साथ करने का भाग्य मिला है, आबू की इस भूमि में रहने का भाग्य मिला है और हम कर क्या रहे, तपस्वी भूमि में रहने का भाग्य मिला है, हम कर क्या रहे, इतनी महान भूमि में रहकर भी तपस्या ना करे तो क्या करे, जीवन व्यर्थ है अगर तपस्या नहीं कर रहे। तो ये सारी पॉइंट्स है, इससे भी वैराग आएगा, तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। तो आज का तपस्या का दूसरा दिन है, तपस्या के दूसरे दिन में मैं राज ऋषि हूं, राजा अर्थात स्वयं पर नियंत्रण है, संयम है मेरा, ये आंखों पर संयम है, कानों पर संयम है, मुख पर संयम है, हाथों में संयम है, पैरों में संयम है, एक एक इंद्रियों पर मेरा संयम है, मेरे वश में है, इधर उधर नहीं जाने दूंगा मैं, जो कल बताया था, इधर उधर नहीं देखने दूंगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज सारा समय बुद्धि को किसी क्रिएटिव काम में, कोई अच्छे काम में लगा के रखूंगा, ये मेरे वश में है, जैसे मैं संकल्प करूंगा वैसा होगा, संकल्प छोटे छोटे करना, संकल्प शक्ति दृढ़ होगी, छोटे से संकल्प, छोटे छोटे संकल्प करके आगे बढ़ते जाना, भोजन के संकल्प करना, रोज चार रोटी खाते आज दो ही खाऊंगा, बस दो खाया थाली हटा दी, मर नहीं जाओगे, कुछ नहीं होगा, चिंतन करना, एक टॉपिक ले लेना और उसके ऊपर, मन नहीं चाहता कोई टॉपिक पर चिंतन करे, बिल्कुल उसकी तो इच्छा ही नहीं है, वो तो चाहता है फ्यूचर के बारे में सोचे या पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचे, बस उसको कहा कि भाई तुम जरा राज ऋषि के बारे में एक घंटा चिंतन करके आना, इधर भारी हो जाएगा, अरे टाइम नहीं है, कितने बहाने आ जाएंगे, पेट दर्द। तो अपने आप को काम देने हैं, छोटे छोटे काम देने और उसको सफल होके निकलना, इतनी खुशी होती है फिर, छोटे काम से खुशी, ये ऐसा बैठ जाओ बस एक घंटा बैठना है मुझे, ऐसा दुखने दो पैर, कितना भी दुखना है, टूटने दो उसको, पीड़ा होने दो, असहनीय पीड़ा होने दो, होने दो, कितनी भी पीड़ा होती मर नहीं जाएंगे, जो भी होगा। तो लगाओ क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट, तो एक बार आज दिन भर में क्या क्या मिला है, अपने अपने को क्या क्या मिला है, बैठ के चिंतन करना है एकांत में, एक और वैराग, मेरा सबसे ज्यादा लगाव किस में है, मेरी बेटी में है, मेरे बेटे में है, पति में है, पत्नी में है, भाई में है, लौकिक में है, अलौकिक में, इस डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति में है कि उसी के साथ भोजन पर जाना है, उसी के साथ नक्की घूमने जाना है, वो चला जाता है तो बड़ा बेचैनी होती है, वही चाहिए सेवा में, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, कोई किसी की जरूरत ही नहीं है, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो बाला मैं वैरागिन होंगी, मीरा कहती है कि मुझे वैरागिन होना है, मुझे वैराग ही अच्छा लगता है, वैराग शब्द में कितना अमृत समाया हुआ है, वैराग बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है, राम भाई कितना कितना उसमें ये है वैराग, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम ने जिस तरह का जीवन जिया ना, वही जीवन जीना है, जैसा राम 14 वर्ष जिए, जो उसने खाया वो खाओ, जहां वो सोया वैसे ही सो जाओ, ये जमीन, ये इसमें सोने का अभ्यास करना है, ये सबसे बेस्ट है, सारी पीठ दर्द विर्द दर्द सब चला जाएगा, सब खत्म, हाँ पर पहले बहुत दर्द होगा, पहले दिन तो हमको याद है जब पहली बार हम नीचे सोए थे, आधी रात में बीच से उठ के आ गया काम से और फिर उठ के बेड पर सो गए, दूसरे दिन फिर वैसा ही किया, फिर से दर्द हुआ, फिर दर्द हुआ, फिर उठ के सो गए, फिर चौथे दिन अमृत वेला लेट हो गया, चार बज गए एक बार क्योंकि लेट सोए इतना दर्द, पर वो करते रहे करते रहे करते रहे, ऐसा अभ्यास हो गया कि अभी ये नीचे ही अच्छा लगता है, बेड तो चाहिए ही नहीं, बेड क्या हो गया, बेड का क्या करना है, वो बिस्तर क्यों चाहिए, कड़क ये बिना दरी के तो उससे भी बेस्ट है जरूरत ही नहीं है कोई चीज की। और जितना ज्यादा, एक लास्ट पॉइंट, जितना ज्यादा हम अपने आप को बताएंगे ठंडी है ठंडी है ठंडी है ठंडी, और ज्यादा ठंडी लगेगी। एक पुरुषार्थ है ठंडी से मुक्त हो जाना, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे कि उसकी कौन सी विधियां है कि जिसमें ऐसा करे कि ठंड का नाम ही निशान ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, ये सारा साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, इधर है सारा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये भी जीत होगी, एक ये भी स्वराज्य अधिकारी बनना है एक, ये सब क्योंकि अभ्यास तो उसका है गर्म का, ठंडे का कहां अभ्यास है, फिर हम ये कहां से कहते योगी अर्थात ठंडी गर्मी सब में समान, एक ही तरफ हो गया ना समान, दूसरी तरफ का तो अभ्यास है ही नहीं। योगी अर्थात तीनों ही वातावरण में स्टेबल, चाहे कितनी भी ठंड पड़ने दो बढ़ने दो कोई फर्क नहीं, ये इधर है हमने डाल के रखा है, ये यहां है, साइकोलॉजिकल है सब, ठंडी साइकोलॉजिकल है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद, ओम शांति।
बाला जी ने